25 नवंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फतल। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल। लोकसभा में महाराष्ट्र को लेकर भारी हंगामा।
इस पंपलेट को आप हटा दें।
बताएंगे क्यों मॉब लिंचिंग नहीं बन पाया है झारखंड में चुनावी मुद्दा।
बोतल में पेशाब किया और लाके दे रहा तो क्या करेंगे, पी रहे हैं जो पिए जो उसमें बोतल में भर दिया उन लोग पेशाब करके। उसके बाद वहाँ से हम लोग उठा के थाना ले गया तो थाना प्रभारी बोल रहा है कि साला ही बैल काटता है, मारो।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार के गठन को चुनौती देने वाली कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने एनसीपी के सभी विधायकों के समर्थन वाला पत्र पेश किया। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के न्योते वाली चिट्ठी भी सर्वोच्च अदालत में पेश की। महाराष्ट्र की राजनीति का असर आज संसद भवन में भी देखने को मिला। आज कांग्रेस ने महाराष्ट्र में घटी राजनीतिक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार को संसद में घेरने की कोशिश की। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्षी दल के नेता इस मुद्दे को उठाते रहे। लोकसभा में भारी हंगामे की वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के 2 सांसदों TN प्रथापन और हिबी एडेन को आज की कार्यवाही से निलंबित भी कर दिया। हांगकांग के नेता और चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने कहा है कि उनकी सरकार जिला परिषद के चुनावी नतीजों का सम्मान करेगी और जनता के मत को खुले दिमाग से सुनेगी। रविवार को हुए मतदान में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों ने अभूतपूर्व बढ़त हासिल की है। इन उम्मीदवारों ने लगभग 90% सीटों पर जीत दर्ज की है। इन चुनावों को कैरी लैम के लिए एक अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि हांगकांग में बीते कई महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साउथ होराइजन वेस्ट से जीत दर्ज करने वाले लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवार केल्विन लैम ने कहा कि यह कोई जनमत संग्रह तो नहीं है, लेकिन यह सरकार के लिए एक कड़ा संदेश जरूर है। चीन की कड़ी निगरानी वाली जेलों में वीगर मुसलमानों के सुनियोजित ब्रेन वॉश का ब्यौरा सामने आया है। यह ब्यौरा बीबीसी की टीम को कुछ लीक हुए दस्तावेजों के जरिए मिला। चीन की सरकार लगातार कहती रही है कि शिनजियांग प्रांत में स्थित वीगर समुदाय के कैंपों में वो शिक्षा और प्रशिक्षण मुहैया करवाती है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेज दिखाते हैं कि किस तरह वीगर मुसलमानों को जेल में कैद करके रखा जाता है, सजा दी जाती है और उन्हें जबरन खास तरह के विचार सिखाए जाते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। रविवार को हुए मतदान में उन्हें 60% से अधिक मत प्राप्त हुए। उनकी प्रतिद्वंदी पूर्व प्रधानमंत्री वायोरिका डेंसिला को 37% वोट मिले। योहानिस ने चुनाव प्रचार के दौरान न्यायालय की स्वतंत्रता और नियम कानून से चलने वाले शासन की बात कही थी। हालांकि उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ कानूनों को हल्का किया है। फिलीपींस की सेना ने ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन और उनकी पत्नी जो फिलीपींस के नागरिक हैं, उन्हें एक इस्लामिक समूह की कैद से छुड़ाया है। ये पति पत्नी अक्टूबर से इस समूह के कब्जे में थे। इस दंपत्ति को मिंडानो द्वीप में स्थित एक रिजॉर्ट से अबू सयाफ नामक इस्लामिक समूह के 4 लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। आज फिलीपींस की सेना और इस्लामिक समूह के बीच कुछ गोलीबारी हुई, जिसके बाद सेना ने इस दंपत्ति को छुड़ाने में कामयाबी पाई। मिंडानो द्वीप में कई चरमपंथी समूहों का वर्चस्व बताया जाता है। उरुग्वे के चुनाव आयोग का कहना है कि रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेंटर राइट नेशनल पार्टी के लुइस लकाले पो थोड़ा आगे चल रहे हैं। उनके ठीक पीछे सत्ताधारी ब्रॉड फ्रंट के डेनियल मार्टिनेज हैं। अभी तक 99% मतों की गणना हो चुकी है। लकाले पो के पिता उरुग्वे के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि जीत उन्हीं की होगी। वहीं दूसरी तरफ 62 वर्षीय पूर्व मेयर मार्टिनेज ने अंतिम परिणामों का इंतजार करने की बात कही। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट अब महाराष्ट्र के संकट पर कल यानी मंगलवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। सोमवार को करीब 2 घंटे इस मसले पर अदालत में तीखी बहस हुई। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की तरफ से जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग की गई, जबकि फडणवीस, अजीत पवार की ओर से कुछ और समय मांगा गया। थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता विनीत खरे से और पूछा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ।
तो रेहान, सुबह 10:30 बजे आज सुनवाई का दूसरा दिन था। दोनों पक्षों के जो वकील हैं, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, और मुकुल रोहतगी रिप्रेजेंट कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं अभी। काफ़ी देर बहस हुई और जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की तरफ से कहा गया कि आप जो है फ्लोर टेस्ट तुरंत ऑर्डर करें। जो वकील थे मुकुल रोहतगी, उनका कहना था कि जो गवर्नर जिस तरह से उन्होंने डेट दी उसी हिसाब से चीज़ें हों। आखिरकार काफ़ी देर बहस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसले की बात कही है, 10:30 बजे रिजर्व रख दिया कल तक।
ये बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपने कई संविधान विशेषज्ञों से बात की है, उनका क्या कहना है?
देखिए, बहुत सारे पेंच हैं, लेकिन मेरी संविधान मामलों के विशेषज्ञ हैं सूरत सिंह, मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई और वो जैसे फट पड़े, बिल्कुल बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे जिस तरह से महाराष्ट्र में ये राजनीतिक समर चल रहा है।
ये सब तमाशा हो रहा है, शिवसेना का एजेंडा अलग है, बीजेपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, एनसीपी का अलग है। चुनाव में लोगों को कुछ बता के आ रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में पावर के लिए इस तरह से जो बंदर बांट कर रहे हैं, ये एक डेमोक्रेसिकली बड़ी डिस्टर्बिंग ट्रेडिशन है। सारे ये एमएलए जो है संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान को निष्ठा के साथ, विदाउट फियर और फेवर, विदाउट अफेक्शन और इलविल के लागू करेंगे। क्या ये लागू करेंगे अगर इस तरह के इनका इथोस, इनकी मोरालिटी, इनका चरित्र इस प्रकार का है?
ये थे सूरत सिंह। अच्छा, ये बताइए विनीत, ये पूरे मामले के अगल बगल संवैधानिक पेच क्या है?
देखिए, एक पेच है कि जब अजीत पवार ने भाजपा से हाथ मिलाया था तब वो एनसीपी विधायक दल के नेता थे, और इस फैसले के बाद एनसीपी ने जयंत पाटिल, उनको फिर विधायक दल का नेता बनाया, अजीत पवार को हटा दिया। अब सवाल ही पूछा जा रहा है कि जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो व्हिप किसका लागू होगा। इस पर मैंने सूरत सिंह से ही थोड़ी देर पहले सवाल किया, क्योंकि बीजेपी के जो आशीष शेलार हैं, नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुना गया उसे अवैध बताया था। आइए सुनते सूरत सिंह क्या कहते हैं इस पर।
देखिए, ऐसा है कि व्हिप तो जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष है उन्हीं का लागू होगा, क्योंकि उस समय कोई व्हिप नहीं था जब इन्होंने राज्यपाल जी को लेटर लिखा था, और क्योंकि व्हिप नहीं था तो ये नहीं कह सकते कि व्हिप का कोई वायलेशन हुआ या दे हैव इनकर्ड एनी डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरे, ये नहीं पता था कि कितने लोग जा रहे हैं, अगर 2/3 चले जाते हैं तो वो मर्जर माना जाता, विलय माना जाता है, जहां डिस्क्वालिफिकेशन या एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता।
दूसरा सवाल प्रोटेम स्पीकर और फ्लोर टेस्ट को लेकर है। आज देवेंद्र फडणवीस का पक्ष रख रहे मुकुल रोहतगी ने जो तरीका होगा फ्लोर टेस्ट का वो बताया कि पहले प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है, फिर विधायक शपथ लेते हैं और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है। इस पर मैंने फैजान मुस्तफा, जो संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, उनसे पूछा कि क्या प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। आइए सुनते हैं।
प्रोटेम स्पीकर भी करा सकता है, फ्लोर टेस्ट के लिए मना नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर फ्लोर टेस्ट नहीं कराएगा, क्योंकि इस तरह के झगड़े नहीं होते, क्लियर मेजोरिटी होती है या क्लियर कोलिशन होता है। आम तौर से ये होता है कि स्पीकर का इलेक्शन होता है और उसके बहुत दिन बाद आता है वो मैटर। स्पीकर का इलेक्शन से ही पता चल जाता है कि सरकार को बहुमत है या नहीं। स्पीकर का इलेक्शन होगा उसके बाद आपको जरूरत नहीं होगी विश्वास मत को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि वो क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा मेजोरिटी किसकी है।
अच्छा, एक मामला और उठ रहा है कि जिस तरह से गवर्नर ने फैसले लिए हैं और फिर स्पीकर ने फैसले लिए हैं और उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी पर सवाल उठ रहे हैं कि इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है नहीं, इस पर भी मैंने फैजान मुस्तफा से पूछा तो उनका कहना था,
अब स्पीकर इम्पार्शियली बिहेव नहीं करते, वो जो सत्तारूढ़ दल है उसी से होते हैं, साथ देने के लिए वो बायस डिसीजंस देते हैं या डिले करते हैं डिसीजन करने में। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कहा कि अगर स्पीकर का डिसीजन जो है वो मेलाफाइड है तो कोर्ट फिर उसकी न्यायिक परीक्षा करेगी, वो देखेगी कोर्ट के वो सही था डिसीजन या नहीं था।
ये थे फैजान मुस्तफा।
महाराष्ट्र की राजनीति पर बात कर रहे थे विनीत खरे। आज कांग्रेस ने महाराष्ट्र में घटी राजनीतिक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और संसद में भारी हंगामा किया। इस दौरान दो कांग्रेसी विधायकों हिबी एडेन और प्रतापन की मार्शलों के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सांसदों को सस्पेंड कर दिया।
इस पंपलेट को आप हटा दें।
महाराष्ट्र को लेकर संसद में भारी शोर शराबा। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने ये बात साफ की है कि अजीत पवार के बीजेपी को समर्थन देने और उनके उप मुख्यमंत्री बनने के पीछे उनका हाथ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र की अगली सरकार बनाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने 9 सिंचाई परियोजना मामले में अजीत पवार के खिलाफ चल रही जांच रोक दी है। थोड़ी देर पहले मैंने मुंबई फोन कर बीबीसी मराठी के संवाददाता मयूरेश से संपर्क किया और पूछा कि आज दिन भर महाराष्ट्र में क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां रही।
आज सबसे अहम बात जो आज सुबह में दो चीजें हुई, सभी की निगाहें मुंबई से भी दिल्ली में लगी हुई थी, वहां पे जो भी चल रहा था, लेकिन उसी वक्त मुंबई में भी कुछ अहम बातें आज पॉलिटिकली घटी। उसमें से एक है कि जिस सरकार को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना विरोध कर रही है और वो बता रही है कोर्ट में जाकर कि ये गलत तरीके से बनाई हुई सरकार है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इन्होंने दोनों ने आज मंत्रालय में जाकर अपने काम जो है वो संभाला, पदभार जो है वो संभाला और सरकार का काम जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। लगता यही है कि वो बीजेपी अब भी अपने जो मूव उन्होंने खेली है उस पर कॉन्फिडेंट है। हालांकि उसके बाद दिन भर मैं कहता हूँ, करीब मैं भी वहां पे था, तो करीब 3 तास एनसीपी के जो सारे नेता हैं शरद पवार के अलावा बड़े नेता जो हैं वो फिर से अजीत पवार का मन बदलने में लगे हुए थे। 3 घंटे उन्होंने उनसे मुलाकात की और वो उनका मन बदलना चाहते थे कि चलिए आप छोड़ दीजिए बीजेपी और वापस एनसीपी में चले आइए, लेकिन लगता है कि अजीत पवार ने भी अपना मन बदल दिया है और उन्होंने जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस पर ही वो अब तक कायम है। लेकिन दूसरी ओर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने जाकर राज्यपाल से उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाए, इस तरह की मांग की। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास 162 विधायक हैं और उन्हीं के पास बहुमत है, बल्कि जो सरकार अब बनी है उनके पास बिल्कुल ही बहुमत नहीं है, तो उन्हें बुलाया जाए, पहले फ्लोर टेस्ट लेकर ये सरकार खारिज की जाए और उसके बाद उन्हें जल्द से जल्द बुलाया जाए। हालांकि राज्यपाल ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा और उनकी मांग को आगे लेकर क्या होता है वो देखना पड़ेगा। बीजेपी ने ये कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का तो ठीक है, एनसीपी के तो विधायक दल के नेता उन्हीं के पास चले आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो अपना विधायक दल का नेता भी नहीं चुना, तो वो इस तरीके की मांग राज्यपाल के पास कैसे कर सकते हैं। हालांकि दिन भर गहमा गहमी होती रही। शरद पवार खुद मुंबई से आज बाहर जा चुके थे, कराड़ में वो गए थे और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि फिलहाल कुछ संकट आए हुए हैं लेकिन ये संकट जल्द ही दूर के लिए कर दिए जाएंगे।
इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजीत पवार के खिलाफ जो केस थे उसको बंद करने का फैसला किया है, इस पर नजर है आपकी?
ये भी खबर बहुत चर्चा में है पिछले कुछ घंटों से और एसीबी ने कुछ 9 करीबन ऐसे केसेस हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ज्यादातर विदर्भ के इलाके में दिए गए हुए थे जब अजीत पवार के राज्य सरकार में मंत्री थे, इरिगेशन मिनिस्टर थे या फिर एनसीपी के पास वो मिनिस्ट्री थी तब ये हुए थे, और वो बंद करने के लिए उसमें लिखा गया है कि न्यायालय का कुछ निर्णय आने के बाद या फिर अगर लगे कि इंक्वायरी फिर से शुरू कर देनी हो तब उस वक्त के लिए ये इंक्वायरी बंद की जाए। इसके ऊपर बहुत गहमा गहमी हुई, ये पूछा गया बीजेपी से कि क्या अजीत पवार ने अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है, तो जिस अजीत पवार के ऊपर उसी इरिगेशन स्कैम के लिए आरोप लगाए गए और उनकी उनको सत्ता से दूर किया गया, बस उसी इरिगेशन स्कैम में क्या उनको क्लीन चिट दे दी है? राव साहब दानवे जो केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और ये सब मामले जो है वो कोर्ट में ही शुरू है। और एसीबी की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी बाद में ये बयान आया कि करीब 3,000 टेंडर्स के बारे में इस तरह की कोशिश हो रही है और ये जो 9 केसेस हैं ये रूटीन है, कोर्ट में रिपोर्ट देना है और इसका अजीत पवार से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जी हाँ, कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी आरोप कर दिए गए हैं कि देखिए जिस अजीत पवार के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही थी जिस इरिगेशन स्कैम के लिए, तब उसी में उनको क्लीन चिट दे रहे हैं वो।
ये थे बीबीसी मराठी के संवाददाता मयूरेश। ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। पिछले 5 सालों में पूरे भारत में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो या पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। मगर उन्मादी भीड़ के हाथों मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा झारखंड में ही दर्ज की गई है। झारखंड की सरकार का कहना है कि ये घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, इसलिए इनके लिए सिर्फ झारखंड को ही बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। इन घटनाओं ने कई आंगन सूने कर दिए और कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को अफसोस है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मॉब लिंचिंग किसी दल का चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। झारखंड से BBC संवाददाता सलमान रवि की रिपोर्ट।
पिछले 5 सालों में सिर्फ झारखंड में ही मॉब लिंचिंग की 11 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 19 लोग मारे गए हैं। इन वारदातों के पीड़ित परिवार अपनी वेदना सुनाए भी तो किसको। इन्हीं में से एक हैं जेरेमिना लकड़ा, जिनके पति प्रकाश लकड़ा को उन्मादी भीड़ ने मार डाला। जेरेमिना लकड़ा कह रही थी कि उनके पति की मौत को पुलिस ने छुपाया और पोस्टमार्टम के बाद ही उन्हें ये बात बताई गई। वो ये भी कह रही थी कि पुलिस ने उनके पति के शव को दफनाने के लिए भी दबाव डाला था। मई महीने में एक मरे हुए बैल की खाल उतारते हुए जुर्मू गांव के 4 आदिवासी ईसाइयों पर पास के ही गांव के लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में जेरेमिना के पति प्रकाश लकड़ा की मौत हो गई थी, जबकि जुर्मू के 3 ग्रामीण भी घायल हुए थे। इनमें से एक हैं जनवारिस मिंस, जो भीड़ के निशाने पर आ गए थे।
बोतल में पेशाब किया और लाके दे रहा तो क्या करेंगे, पी रहे हैं जुन, पिए जुन, उसे बोतल में भर दिया उन लोग पेशाब करके। उसके बाद वहाँ से हम लोग उठा के थाना ले गया, तो थाना प्रभारी बोल रहा है कि साला यही बैल काटता है, मारो। कैसा बोलने शुरू किया वो थाना प्रभारी, उसी समय लोग मारने शुरू किया। प्रकाश तो पहले ही मर गया था, उसी समय मारा था। तो थाना प्रभारी बोलता है कि झूठ बोलता है कि हॉस्पिटल में मार गया, ऐसा बोलता है।
जहां जुर्मू में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं रामगढ़ में मारे गए अलीमुद्दीन अंसारी के यहाँ भी मातम पसरा है। अलीमुद्दीन के परिवार को आज भी इंसाफ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी पत्नी मरियम कहती हैं,
मोदी सरकार हो गया 1 महीना पहले, वो अमेरिका जब गए थे तो अमेरिका में उनको फूलों के हाथ से स्वागत कर रहा था। एक तो फूल गिर गया था, तो फूल गिर गया तो बोला, अरे वही मतलब वो बोले अफ ये इतना नाजुक फूल है, इसको उठा लो। तो मोदी जी को जब नाजुक फूल दिखाई दे रहा है, आज जो फूल को गिराया जा रहा है उसका वो फूल मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो नाजुक फूल था, माने उस फूल में जान भी नहीं है, गिर गया उसमें दर्द था, उनको अफसोस था। और यहाँ इतना फूल गिराया जा रहा है, तो मेरा भी सर उतना नाजुक फूल था, तबरे जनसारे था वो भी तो किसी की नाजुक फूल था, और सब जो घटना हो रहा जो गिराया जा रहा है वो भी तो नाजुक फूल था। क्या बोले, खत्म हो गए, थक गए, मतलब जाते जाते कहाँ अब जाए।
रामगढ़ की मॉब लिंचिंग की घटना में कुल 11 अभियुक्त बनाए गए, जिनको निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, मगर कुछ अभियुक्तों को उच्च न्यायालय से बेल मिली है। अभियुक्तों के वकील संजीव अम्बष्ट अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या को पुलिस हिरासत में हुई मौत बताते हैं।
हम लोग का जो दलील था, डिफेंस का जो दलील था, मॉब के द्वारा पीटे जाने की बात कही गई थी, तो एक्चुअली उसका स्पॉट पर डेथ हुआ नहीं था, पुलिस उसको कस्टडी में लाई। हम लोग का यह डिफेंस था कि एक्चुअली उसका डेथ जो है वो मारने से नहीं हुआ था, बल्कि वो पुलिस कस्टडी में पिटाई से उसकी डेथ हुई थी।
सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो भीड़ की हिंसा का शिकार बने, पुलिस उन पर ही मामले दर्ज कर परेशान कर रही है। सिराज दत्ता ने झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं की समीक्षा की है।
प्रकाश लकड़ा के केस में देखे कि 4 आदिवासी, उनको गौहत्या के नाम पर पीटा गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद पुलिस ने 2 FIR दर्ज किया। एक तो जो परपेट्रेटर्स थे जिन्होंने मारा, 4 व्यक्ति जो बचे थे उनके ही गवाही पे उन पर किया, और एक इन चारों पे ही कर दिया गौहत्या के केस का केस उन पे दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं ये तो और भी विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आप आइडियली सोचेंगे तो पूरे व्यवस्था को शायद मदद करना चाहिए कि पीड़ित को न्याय मिले, लेकिन यहाँ तो पीड़ित फिर से अभी ऐसे व्यवस्था में फंस गया है कि उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया। तो अभी उनको जो मारा वो भी अभी कोर्ट में रहेगा और ये जो है ये भी अपने केस के पीछे अभी दौड़ते रहेंगे। तो ये तो न्याय का जो सवाल है ये तो बड़ा सवाल है कि खुद ही विक्टिमाइज हो रहे हैं लोग मार खाने के बाद भी।
संसद के शीतकालीन सत्र में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को इन घटनाओं से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि अभियुक्तों को राजनीतिक संरक्षण की वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। सलमान रावी, बीबीसी झारखंड।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आज इंदु पांडे मेरे साथ हैं।
मेरा भी नमस्कार है।
और इंदु पांडे के हाथ में मैं देख रहा हूँ कि चिट्ठियाँ, जो डाक से आई हुई चिट्ठियाँ हैं वो हैं, और ईमेल थोड़ा सा आपने दूर रख रखा है, क्यों?
नहीं नहीं, पहली चिट्ठियों को हम करीब लेकर के आए हैं। यह है अभय कुमार निराला, बड़ोन बक्सर बिहार से। लिखते हैं कि भारत पाकिस्तान पास रहकर भी कितने दूर हैं, आखिर क्यों? नवंबर के रेहान फजल के ऐतिहासिक विवेचना हमें बहुत सुंदर लगी, और राघवन साहब की जो किताब है द पीपल नेक्स्ट डोर द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद पाकिस्तान, 70 साल में यानी कि 1947 से लेकर के 1965 तक रेहान फजल ने जो नज़र दौड़ाई है बहुत अच्छी है।
बिल्कुल, अभय कुमार निराला जी हमारे पुराने और बहुत ही महीन श्रोता हैं। इनकी टिप्पणियाँ, इनकी चिट्ठियाँ हम बहुत गौर से पढ़ते हैं और इनकी राय को हम सिर माथे रखते हैं, ये इनको मालूम भी है, इसलिए लगातार हमसे खतो किताबत करते रहते हैं। एक चिट्ठी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ता हूँ। ये पोस्टकार्ड आया है, लिखने वाले हैं कोटद्वार उत्तराखंड से कमलेश कुमार सक्सेना। आप देखिए ये क्या लिखते हैं। अंजू जी लिखते हैं, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूं, पिछले 2 माह से आपके कार्यक्रम ठीक से सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब सुनाई पड़ते हैं तब जरूर सुनता हूं। उम्र करीब 79 वर्ष है, यानी 80 से 1 साल कम है। आंखों की रोशनी कम हो गई है। पहले गलियों में भी डाक विभाग की पत्र पेटियां लगी रहती थी और अब हटा ली गई हैं। पोस्ट कार्ड लेने व पत्र डालने के लिए मुख्य डाकघर जाना पड़ता है, यानी बहुत, एक तो बुज़ुर्ग हैं और बड़े परेशान भी हो रहे हैं कि पत्र भेजना चाहता था लेकिन नहीं भेज पाता हूँ, नियमित पत्र लिखता था, अब सुनता भर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। देखिए कमलेश कुमार सक्सेना जी, आप जैसे जो श्रोता हैं वो हमारा संबल हैं, उनकी वजह से हमें लगता है कि इतने वर्षों से 80 साल के एक बुज़ुर्ग अगर हमारी बात सुन रहे हैं और 11th या 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, बीबीसी के कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो आप चिट्ठी भले लिखें या ना लिखें, आपका आशीर्वाद बीबीसी के साथ है और आपका साथ बीबीसी के साथ रहेगा, ये हमें पक्का विश्वास है। तो आपकी अगली चिट्ठी का भी मुझे इंतजार रहेगा कमलेश कुमार सक्सेना जी।
और आज तो उन्होंने आपको सुनी लिया होगा।
जी उम्मीद
है। ये पोस्टकार्ड हमारे पास आया है बड़े ही उत्साह के साथ। लिखते हैं, नमस्कार, सिकंदराबाद जिला जालोर राजस्थान, मैं पहली बार पत्र लिख रहा हूँ, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, बीबीसी का कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और 1996 से लगातार सुनता चला रहा हूँ। इनकी शिकायत है कि 7:30 से लेकर के 8 बजे तक साफ साफ जो खबरें आती सुनाई नहीं देती हैं।
जी हाँ, जो शिकायत अभी कमलेश कुमार जी ने की थी वही शिकायत इनकी भी है शॉर्टवेव में, कुछ इलाकों में हमारे श्रोता ये शिकायत करते हैं, लेकिन फिर हमारे पास ऐसी चिट्ठियाँ भी आती हैं कि आज आपका सुबह का कार्यक्रम, शाम का कार्यक्रम बहुत साफ साफ सुनाई दिया, इस तरह की चिट्ठियां भी आती हैं। हम जो भी आपकी शिकायत आती है इसको हम लंदन भेजते हैं और जो संस्था ये शॉर्टवेव प्रोग्राम आप तक पहुंचाती है उसको बाकायदे बताया जाता है कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये शिकायत आपकी जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन इंदु जी, ये तो मैंने कह दिया, पर इन्होंने अपना नाम लिखा है क्या? कौन साहब है, इनका नाम तो बताइए।
नहीं, ये इतने उत्साह में इन्होंने अपनी पहली चिट्ठी लिखी कि सब कुछ के अलावा नाम भूल गए।
अपना नाम लिखना भूल गए, देखिए इधर। हाँ वाह। भाई आप अपना नाम लिखना भूल गए, अगली बार हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या नाम है, और दूसरी चिट्ठी का हमें इंतजार रहेगा।
और ये हमारे पास ईमेल आया है श्रीकांत चौधरी का, जो कि भूतपूर्व न्यायाधीश एवं व्यंग्यकार, नया बाजार नंबर 1 दमोह मध्य प्रदेश से लिखते हैं। कहते हैं कि आपने मेरे विचारों को किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। आगे लिखते हैं कि 1965 से ये बीबीसी सुन रहे हैं,
1965 से, यानी
1965 से जी, और इन्हें अत्यंत आश्चर्य और क्षोभ होता है कि अभी कुछ समय से हमारे कुछ श्रोता बीबीसी की निष्पक्षता, तटस्थता पर आरोप लगाते हैं। शायद इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि वो एक धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्य और लोकतांत्रिक आदर्श उनके लिए सर्वोच्च नहीं है।
तो श्रीकांत चौधरी साहब, आपकी चिट्ठी हमको मिलती रहती है और हम उसको आपकी राय में शामिल भी किया जाता है। आपको ये नाराज़गी है तो मुझे लगता है कि नाराज़गी आप कृपया दूर कर दें, क्योंकि आपकी चिट्ठी तो शामिल हो गई है और आपकी राय हम हमेशा बहुत गौर से सुनते हैं और गौर से पढ़ते हैं।
और ये पोस्टकार्ड है लक्ष्मण दास शर्मा का, मंडलाना नारौल हरियाणा से।
ये भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बुजुर्ग श्रोता हैं।
तो ये कहते हैं कि 2 नवंबर को इंडिया बोल का विषय बहुत ही सोच समझ कर चुना गया था क्या?
बिल्कुल, हर बार हम लोग जो इंडिया बोल का विषय है उसको सोच समझ कर ही चुनते हैं, और ऐसा विषय चुना जाता है जिसमें जनता यानी श्रोता अपनी राय जाहिर करना चाहते हो, चाहे पक्ष में करें या विपक्ष में करें।
आदाब बीबीसी हिंदी, ये हमारे पास मेल आया है मोहम्मद आमिर उद्दीन का कुवैत से। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए कहते हैं कि संदीप सोनी जी का 24 नवंबर का नमस्कार भारत में महाराष्ट्र की राजनीति पर प्रस्तुति बहुत ही दिलचस्प लगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। कुवैत से हमारी चिट्ठियां आ रही हैं और चाहता तो ये था कि कुछ और बातचीत हो, लेकिन समय बिल्कुल कम है, इसलिए चलते चलते अपने श्रोताओं को पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो पता लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब देखते हैं आज खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन के पुरुष एकल फाइनल में ब्राजील के यगोर कोहेलो के खिलाफ रोमांचक जीत के साथ 3 महीने में चौथा खिताब अपने नाम किया। भारत के शीर्ष वरीय लक्ष्य ने कल रात हुए फाइनल में ब्राजील के अपने विरोधी को 56 मिनट में 18-21, 21-18, 21-19 से हराया। उत्तराखंड के 18 साल के लक्ष्य का पिछले 4 टूर्नामेंट में ये तीसरा खिताब है। आयरिश ओपन के दूसरे दौर में शिकस्त झेलने के बाद लक्ष्य ने यहां शानदार वापसी की। दुनिया के 41वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने 6ठे वरीय ब्रायन यंग को सीधे गेम में हराया और फिर सेमीफाइनल में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव को शिकस्त दी। इस जीत से लक्ष्य BWF रैंकिंग में सिर्फ 40वीं जगह बना लेंगे और ग्रेड 2 की शीर्ष प्रतियोगिता में सीधे प्रवेश के करीब होंगे। और भारत की फर्राटा धावक दुति चंद, जो एक समय राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने से रोक दी गई थी, उन्होंने एक बार फिर से नाम कमाया है और अब टाइम पत्रिका ने उन्हें भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने वाले 100 उभरते सितारों में शुमार किया है। हिमा दास के बाद भारत की दूसरी महिला धावक है दुति चंद, जो विश्व स्पर्धा में भारत के लिए सोना जीती हैं। और अगर हम टेनिस की बात करें तो दिग्गज राफेल नडाल ने अपने शानदार सत्र का अंत कल डेनिस शापालोव को हराकर कनाडा पर जीत से स्पेन को 6ठा डेविस खिताब दिलाकर किया। नडाल ने शापालोव को 6-3, 7-6 से हरा के स्पेन को 2-0 की विजयी बढ़त दिलाई। पहले पुरुष एकल में रोबर्टो बतिस्ता आगूत ने फेलिक्स आगर एलियासिम को 7-6, 6-3 से हरा के स्पेन को 1-0 से बढ़त दिलाई थी। नडाल ने मैच के बाद कहा कि साल का अंत इस तरह से करके वो बहुत खुश हैं।
और सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के गठन को चुनौती देने वाली कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। महाराष्ट्र की राजनीति का असर आज संसद भवन में भी देखने को मिला। आज कांग्रेस ने महाराष्ट्र में घटी राजनीतिक घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार को संसद में घेरने की कोशिश की। हांगकांग की नेता और चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने कहा है कि उनकी सरकार जिला परिषद के चुनावी नतीजों का सम्मान करेगी और जनता के मत को खुले दिमाग से सुनेगी। चीन की कड़ी निगरानी वाली जेलों में वीगर मुसलमानों के सुनियोजित ब्रेन वॉश का ब्यौरा सामने आया है। यह ब्यौरा बीबीसी की टीम को कुछ लीक हुए दस्तावेजों के जरिए मिला है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। रविवार को हुए मतदान में उन्हें 60% से अधिक मत प्राप्त हुए। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।